पाठ 27 अध्याय 27 उत्पत्ति
27 पूरा प्रहेण।
मुझे 19वीं शताब्दी के महान यहूदी ईसाई विद्वान और शायद वह व्यक्ति जिसके पढ़ने से मैं तोरह के बाद दूसरे स्थान पर प्रभावित हुआ, अल्फ्रेड एडर्सहाम द्वारा दिए गए एक गहन कथन को उद्धृत करने की अनुमति देता हूं। यदि कोई ऐसा बिंदु है जिस पर हमें उत्सुकता से ध्यान देना चाहिए गार्ड, यह प्रलोभित परमेश्वर की है। हम प्रभु को तब प्रलोभित करते हैं जब अपने स्वयं के झुकावों को सुनकर हम एक बार फिर उस पर सवाल उठाते हैं जिसे उन्होंने पहले ही स्पष्ट रूप से तय कर दिया है। जहां ईश्वर ने निर्णय लिया है वहां हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए और न ही पीछे रहना चाहिए।
कितनी बार हम सभी को ईश्वर की हमसे अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से देखने का कष्ट हुआ है, लेकिन हम उससे एक और अलग निर्णय के लिए पूछते हैं जो हमारे व्यक्तिगत एजेंडे या जो होना चाहिए उसके बारे में हमारे दृष्टिकोण के लिए बेहतर अनुकूल है। इसहाक ने यही किया और इससे परेशानी के अलावा कुछ नहीं हुआ। यह अध्याय बूढ़े, अंधे और बीमार इसहाक के साथ शुरू होता है जो ऐसा को स्मारक भोजन के हिस्से के रूप में कुछ मांस का शिकार करने के लिए कहता है, जो उस आशीष का अभिन्न अंग था जो इसहाक ऐसा को देना चाहता था। निसंदेह ये कोई बुद्धिमानी नहीं थी जो परमेश्वर ने इसहाक को उसकी पत्नी रेबेका के माध्यम से बताया था जो घटित होने वाला था। क्या इसहाक ने इतने वर्षों पहले अपनी पत्नी द्वारा कही गई बातों को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया था? शायद संदेहपूर्ण। क्या उसने एसाव के साथ ऐसा बंधन बना लिया था कि वह अपने प्यारे बेटे से यह अत्यंत महत्वपूर्ण आशीष लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, ये जानते हुए भी कि यह उसे अपमानित करेगा और कुचल देगा? या क्या उसने सोचा था कि शायद ईश्वर उसे अपने तरीके से जाने, विद्रोह करने और फिर भी आशीष देने की अनुमति देगा?
मुझे आसानी से स्वीकार करना होगा कि कई वर्षों के अध्ययन के बाद पुराने समय के कुछ महान इब्रानी संतों के अद्भुत कार्यों को पढ़ने के बाद मेरा निष्कर्ष समय के साथ थोड़ा बदल गया है। यह दिलचस्प है। क्या ऐसा नहीं है कि जन्मसिद्ध अधिकार का मामला, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र बेखोर कौन होगा, वास्तव में इस कथा में कभी मुद्दा नहीं है? आप में से कुछ लोग यह सोचकर अपना सिर खुजला रहे होंगे कि फिर यह सब क्या है, या इससे भी बेहतर मेरी बाइबल यह सब जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उससे निपट लेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाता हूं जो आपके दिमाग को थोड़ा शांत कर सकता है। पद 37 को देखें, उत्पत्ति 27 का 37। तब उसने, एसाव ने कहा, क्या उसका नाम ठीक नहीं है याकूब? क्या उसने दो बार मुझे उखाड़ फेंका? उसने मेरा पहलौठे का अधिकार भी छीन लिया और अब मेरा आशीष भी छीन लिया है। और उसने कहा, क्या तूने मेरे लिथे आशीष नहीं रख छोड़ा?
जब तक हम इस अध्याय तक पहुंचते हैं जन्मसिद्ध अधिकार का मुद्दा स्पष्ट रूप से पहले ही हल हो चुका होता है। अनिच्छा से ऐसा लगता है कि इसहाक ने इस दृश्य से पहले किसी बिंदु पर इसे स्वीकार कर लिया था और ऐसाओं को इस बात की सबसे अधिक जानकारी थी। जन्मसिद्ध अधिकार और आशीष के बारे में मेरे अध्ययन से पता चलता है कि ये दोनों चीजें आवश्यक रूप से जुड़ी हुई नहीं है। जन्मसिद्ध अधिकार का मामला अधिकांशतः पहले लड़के के जन्म पर स्वतः ही तय हो जाता है। निश्चय ही यदि वह बच्चा मर जाए तो पानी को गंदला कर देता है, लेकिन निश्चित रूप से दूसरे लड़के को स्वतः ही वह अधिकार मिल जाएगा जो उसके मृत भाई को प्राप्त है, और यदि दूसरे लड़के की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा इत्यादि। और इसमें कोई समारोह या अनुष्ठान शामिल नहीं होगा, इसलिए यह उस युग के व्यवस्था और परंपरा दोनों में पूरी तरह से अंतर्निहित था। तो परिवार के नेता के जीवन के अंत में परिवार को दिए गए पारंपरिक आशीष का मतलब कुछ और था। दूसरे वचनों में ऐसा नहीं है कि वर्तमान परिवार के नेता के जीवन के अंत में हर कोई यह देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा है कि परिवार का नया नेता कौन होगा, किसे बेखोर नामित किया जाएगा। हम सभी एक घेरे में बैठे लालची परिवार के सदस्यों की कल्पना कर सकते हैं जो वकील को बड़ी आशा से घूर रहे हैं क्योंकि वह इच्छा पढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, जैसे बच्चे क्रिसमस ट्री के नीचे उपहारों को घूर रहे हों, आशा कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि उनका क्या इंतजार है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पहलौठे को सब कुछ नहीं मिलता, बस सबसे बड़ा भाग। बाइबिल इसे दोहरा भाग कहती है, और उस दोहरे भाग के साथ साथ उसे कुल पर नेतृत्व का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। अब दोगुने हिस्से की राशि निस्संदेह स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। दोगुने का मतलब यह नहीं है कि पहले जन्मे बेटे को अपने सभी भाइयों से दोगुना वेतन मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि धन की सटीक सूची यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि प्रत्येक को उसका उचित हिस्सा मिले। यह हो सकता था और शायद किया भी। बाद के युगों में विशिष्टता इसी प्रकार घटित होती है। अधिकतर ये भाग अनुमानित थे। एक दोहरा भाग दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक से लेकर व्यावहारिक रूप से हर मूल्यवान चीज तक हो सकता था। यह सब अच्छे बूढ़े पिताजी पर निर्भर था। तो हम यहां जो देख रहे हैं वह आशीष के बारे में है, न कि यह निर्णय कि बेखोर कौन है, और इस मामले में आशीष धन को विभाजित करने के बारे में है, और जैसा कि आज हमारे लिए है और शायद प्राचीन काल से ही हर किसी के लिए विरासत में मिले बच्चों को आम तौर पर लगता है कि अगर एक को दूसरों से अधिक मिलता है तो इसका मतलब है कि उसे दूसरों की तुलना में अधिक प्यार किया गया था, या यदि किसी को दूसरों की तुलना में कम मिलता है तो इसका मतलब है कि उसे दूसरों की तुलना में कम प्यार या महत्व दिया जाता है।
हमें पद एक में बताया गया है कि इसहाक बहुत बूढ़ा था जब उसने आशीष देने का निर्णय लिया। वह लगभग अंधा भी था। अब क्या वह मृत्यु के निकट था? उन्होंने शायद ऐसा सोचा था, हालांकि ऐसा साबित नहीं हुआ। इस समय उनकी आयु 137 वर्ष थी। लेकिन एक सेकंड के लिए रुकें और सोचें कि इससे याकूब और एसाव की उम्र का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। हमें बताया गया है कि उनका जन्म तब हुआ था जब इसहाक लगभग 60 वर्ष का था, तो ये लड़के लगभग 70 के दशक के मध्य में थे। खैर, यह निश्चित रूप से उन अद्भुत मानसिक चित्रों को नष्ट कर देता है जो हमारे पास हैं, जो कुछ पौरुष युवा पुरुषों को उनकी धूर्त माँ द्वारा चारों ओर ले जाया जा रहा है, या इस आशीष के लिए एक पल के नोटिस पर एक एथलेटिक एसाव को मारने का खेल। इन जुड़वाओं लड़कों की माँ रिबेका स्पष्ट रूप से प्रसन्न एसाव के लिए इसहाक के निर्देशों को सुनती है, और वह इसहाक के इरादों को पलटने की साजिश रचती है। रख रहा था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ शुरू किया था। रेबेका शायद सोच रही थी कि अगर उसके बूढ़े पति ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया तो वह ऐसा करेगी। जो भी करना परे कर रहा हूं, भले ही इसमें धोखा शामिल हो। आखिरकार क्या ईश्वर द्वारा निर्धारित यह अंत इसे प्राप्त करने के लिए जो भी साधन अपनाता है उसे उचित नहीं ठहराता है? क्या ईश्वर ने अपनी योजना का लक्ष्य पूरा नहीं किया होगा और इसमें जो भी चीजें शामिल हुई भले ही इसे पूरा करने के लिए गलत किया गया हो? यह एक आस्तिक के ईश्वर के साथ चलने के सबसे कठिन हिस्सों में से एक होना चाहिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उस पर अपना पूरा भरोसा रखना। भले ही इस समय हमारी सारी बुद्धि और इंद्रियां और तर्क और निष्पक्षता और जीवन की भावना अनुभव हमें बताता है कि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो सकता। रेबेका याकूब को बताती है कि उसके पिता के तंबू में क्या हो रहा है, और वह उसकी योजना में शामिल हो जाता है, और वह योजना याकूब के लिए एसाव का रूप धारण करने की है। याकूब थोड़ा अनिच्छुक है, इसलिए नहीं कि वह सोचता है कि वे जो कर रहे हैं वह गलत हो सकता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें खोजा जा सकता है और फिर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यहां तक कि एसाव के कपड़े पहनने, यहां तक कि एसाव के स्वाभाविक रूप से बालों वाले शरीर की नकल करने के लिए उसकी बाहों और गर्दन पर बकरी की खाल लगाने के बाद याकूब अपने पिता के तंबू में चला गया। पहले तो इसहाक को संदेह हुआ, लेकिन उसकी इंद्रियां उसे बताती हैं कि शायद कुछ ठीक नहीं है, परंतु इसहाक को पूरा विश्वास हो गया कि यह वास्तव में उसके सामने एसाव है, इसलिए उसने याकूब को आशीष दिया। आशीष के लिए यहां इस्तेमाल किया गया इब्रानी वचन बेखोर है, और यह एक बहुत ही सामान्य इब्रानी वचन है जो हमें पूरे पुराना नियम में मिलेगा। आइए अब पढ़ें आशीष के वचन वह आशीष जो इसहाक ने याकूब को तब दिया जब उसने सोचा कि यह ऐसा वह है।
उत्पत्ति 27 का 28, अब परमेश्वर तुझे आकाश की ओस और पृथ्वी की उपजाऊ भूमि और बहुतायत का अन्न और नया दाख मधु दे, 29 देश देश के लोग तेरी उपासना करें और जाति जाति के लोग तेरे सामने झुकें, अपने भाइयों का स्वामी बनो और तुम्हारे माता पिता तुम्हें दंडवत करें, श्रापित होवे जो तुम्हें श्राप देते हैं और धन्य हैं वे जो तुम्हें आशीष देते हैं।
अब बिना किसी संदेह के इस आशीष में कुछ ऐसे वचन और पद शामिल हैं जो उचित रूप से आशीष प्रदान करते हैं।
बेखोर पर, उदाहरण के लिए, अपने भाइयों पर स्वामी बनो। इसलिए जबकि इसहाक इस तकनीकी पहलू पर बहस नहीं कर रहा था कि किससे पहले पुत्र के रूप में नामित किया गया था, वह यह तय करने के लिए अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर रहा था कि वास्तव में किसे क्या मिला। और कमोबेश उसका इरादा एसाव को वह सब कुछ देना था जो बेखोर को पारंपरिक रूप से मिलना चाहिए था। यह कुछ कुछ वैसा ही है जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उत्पत्ति माइक कार्थर को उनकी कमान से मुक्त कर दिया था। उत्पत्ति माइक कार्थर ने 5 सितारा उत्पत्ति या सेना में महान शक्ति और पद का व्यक्ति बनना नहीं छोड़ा।
राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे केवल इसलिए बनाया ताकि माइक कार्थर के पास उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए कुछ भी ना हो और कोई भी ना हो। इसहाक यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि याकूब पहलौठा नहीं है, वह याकूब से ज्येष्ठ पुत्र के अधिकांश अधिकार छीनकर एसाव को देने का प्रयास कर रहा है, बिल्ली की खाल उतारने का एक और तरीका। इसके अलावा ऐसा लगता है कि ज्यादातर बार जब बरखा आशीष का उच्चारण किया जाता है तो यह कमोबेश उस बात को आधिकारिक बनाता है जो परंपरा के अनुसार बहुत पहले तय हो चुकी थी। उदाहरण के लिए, एक अमीर आदमी अस्त होता है, एक इच्छा तैयार करता है, एक पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करता है कि इच्छा को कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं बदला जाएगा, और फिर असुविधाजनक रूप से अगले 10 वर्षों तक रहता है। सभी मामले तय कर दिए गए हैं और पत्थर पर लिख दिए गए हैं। प्रत्येक उत्तराधिकारी को कितना प्राप्त करना है यह निर्धारित है और इसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती और इच्छा पर ही नहीं जाती, तब तक कुछ भी प्रभावी नहीं होता। ये आशीष, ये बेरखा इच्छा को पढ़ने के समान है। हालांकि चीजें लंबे समय से तय हो चुकी हैं, लेकिन धन या अधिकार का कोई हस्तांतरण अभी तक नहीं हुआ है। खैर, काम हो गया, याकूब को वह आशीष प्राप्त हुआ जो परमेश्वर ने उसके लिए चाहा था। उसने उस जन्मसिद्ध अधिकार को कायम रखा जो परमेश्वर ने उसकी मां को बताया था, और उसे अधिकार मिला कबीले का नेतृत्व करने की शक्ति। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि याकूब को परमेश्वर के सामने कोई भी आंतरिक खुशी और विनम्रता की भावना महसूस नहीं हुई जो वाचा के वादे की पंक्ति के वाहक के रूप में अभिषिक्त होने के बाद मौजूद होनी चाहिए थी। यह समस्त मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि याकूब ने इसे प्राप्त करना सुनिश्चित करने में गलती की थी। उसका धोखा परमेश्वर के विरुद्ध पाप था और उसके विवेक ने शायद उसे जीवन भर परेशान किया। यह आश्चर्यजनक है, याकूब इन सभी कठिनाइयों से गुजरा और इन सभी दुखद धोखे से केवल वह प्राप्त किया जिसे वह कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रभु ने पहले ही इसे निर्धारित कर दिया था।
लेकिन अब दूसरा जूता गिरा ऐसा वो अपने सफल शिकार से वापस आता है, मांस तैयार करता है और अपने पिता के डेरे में जाता है और अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए तैयार और उत्सुक होता है। आश्चर्यचकित इसहाक को तुरंत पता चल जाता है कि उसे धोखा दिया गया है, और यद्यपि वह ऐसा के लिए महसूस करता है, लेकिन इस तरह के आशीष के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एक बार दिया गया किसी भी कारण से अपरिवर्तनीय है। ऐसा व्याकुल है और किसी प्रकार का आशीष मांग रहा है। मैं आपको पद 33 के वचनों की याद दिलाना चाहता हूं, जहां ऐसा दो चीजों के बारे में बात करता है जो उससे ले ली गई थी, उसका जन्मसिद्ध अधिकार और उसका आशीष, और वह पहलौठे के जन्मसिद्ध अधिकार के खोने को अतीत की बात के रूप में बोलता है और उसके लिए आशीष के खोने को अभी घटित होने वाली बात के रूप में बताता है। ऐसाव बेखोर कहलाने की आशा से तंबू में नहीं गया। ऐसाव बस ढेर सारा धन और शक्ति चाहता था। वह बेखोर होने से झुरी झंझटें और बोझ नहीं चाहता था। वह सिर्फ भौतिक पुरस्कार चाहता था जिसका बेखोर हकदार था। अब इसहाक एसाव को आशीष देता है, लेकिन वह एसाव को जो कुछ दे सकता है उसमें वह सीमित है। इसहाक द्वारा उसे दिया गया आशीष पद 39 और 40 में घटित होता है। पद 39 के वचन कई वर्षों से विभिन्न विद्वानों द्वारा जांच के अधीन हैं, और मैं चाहता हूं कि आप उस चीज पर बहुत बारीकी से ध्यान दें जिसने यहोवा के अनुयायियों यहूदी और ईसाई को एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया है। यह है कि हम बाइबल में जो विरोधाभास प्रतीत होता है उसे हल करने का प्रयास करते हैं, और यह अंततः सिद्धांत और परंपरा बन जाता है, और वह सिद्धांत और परंपरा हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो हमें शास्त्रीय रूढ़ी से अंधा कर देती है। परंपरा पद 39 का प्रतिपादन करती है। हर कोई कृपया अपने बाइबल में इस पद को देखें। तुम्हारा घर पृथ्वी की समृद्धि और ऊपर से स्वर्ग की ओस होगी। कभी कभी यह अमीरी के बजाय मोटापा कहेगा। फिर भी पद का शाब्दिक अर्थ है देखो, पृथ्वी की अमीरी से दूर और स्वर्ग की ओस से दूर तुम्हारा घर होगा।
स्पष्ट अंतर क्यों? यहां तक कि इब्रानियों ने भी दूर भाग को ठीक से क्यों पढ़ा और इसे अस्तित्व से बाहर करने का तर्क दिया? गैर यहूदी ईसाई इसका अनुसरण क्यों करेंगे? ऐसा कोई स्पष्ट कारण प्रतीत नहीं होता है कि कोई उस पर आपत्ति जता सके, और इसमें निश्चित रूप से कोई साजिश शामिल नहीं लगती है। दूर से के इस शाब्दिक अनुवाद को प्रतिबिंबित करने के लिए दशकों पहले बदल गया था। अल्फ्रेड एडर्सहैम ने 100 साल पहले कहा था कि इस पद का गलत अनुवाद किया गया था जब इसमें एसाव को प्रचुर बारिश के साथ एक उपजाऊ और सुंदर जगह पर जाते हुए दिखाया गया था।
ऐसा लगता है कि पद 28 को बांधने के लिए लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि इसहाक याकूब को एसाव के समान ही आशीष दे रहा है कि वे कहां रहेंगे। एक आशीष जो इसहाक ने निष्पक्षता लाने के प्रयास में दिया और अपने भाई याकूब द्वारा एसाव के साथ किए गए अन्याय की भरपाई के लिए दिया। लेकिन मूल इब्रानी पर एक नजर डालने से यह असंभावित हो जाता है, क्योंकि याकूब को आशीष देने की प्रकृति और एसाव को आशीष देने की प्रकृति का वर्णन करने के लिए पूरी तरह से अलग अलग वचनों का उपयोग किया जाता है। पद 28 में इब्रानी में ईश्वर को इसहाक के माध्यम से याकूब को सक्रिय रूप से भूमि की समृद्धि देते हुए दिखाया गया है, और पद 39 में इब्रानी में यह दिखाया गया है कि इसहाक एसाव से कह रहा है कि उसे भूमि की समृद्धि से दूर रखा जाएगा, और जब किसी को पता चलता है कि एदोम एसाव की भूमि मृत सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है और फिर अरब प्रायद्वीप में थोड़ी दूरी तक फैली हुई है जो उस समय थी और हमेशा से रही है, यह भूमि शुष्क और दुर्गम है, यह हैरान करने वाली बात है कि इस पद का कभी गलत तरीके से अनुवाद क्यों किया गया, जिसमें एसाव को एक सुंदर उपजाऊ जगह में रहने के लिए प्रेरित किया गया था। किसी को संदेह होने लगता है कि बहुत पहले एक समय में एसाव और उसकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति थी, और वास्तव में प्राचीन रब्बियों और शास्त्रियों को एसाव के लिए अलग अलग डिग्री तक खेद महसूस हुआ था। और जब हम पीछे हट सकते हैं और इस पूरे प्रकरण के बारे में सोच सकते हैं, तो क्या हम एसाव के प्रति दया का कोई बहुत अच्छा कारण नहीं ढूंढ सकते? आखिरकार ऐसा लगता है कि उसका भाग्य उसके जन्म से पहले ही निर्धारित हो गया था, और याकूब इस पूरे मामले में मुश्किल से ही आगे बढ़ पाया था। साथ ही यह निश्चित है कि एसाव की मां ने खुले तौर पर याकूब का पक्ष लिया और उसका पक्ष लिया। तो क्या परमेश्वर का इरादा एसाव को श्राप देना था या केवल उसे पहलौठे के सभी अधिकारों से आशीष न देना था? ये वे प्रश्न हैं जिनसे प्राचीन शास्त्र और आर्षि मुनि जूझते थे। राशि, एक उच्च सम्मानित इब्रानी आर्षि जो आधुनिक यहूदी धर्म पर बहुत प्रभावशाली थे, रहते थे। प्रथम ईसाई धर्म युद्ध के समय 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उनके पास एसाव के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था, और ऐसाव राशि पर पहले के संतों के सहानुभूतिपूर्ण विचारों को मान्य करने के स्पष्ट प्रयास में उन्होंने लिखा कि उन्होंने ऐसाव को एक प्रकार के रूप में देखा। उन्होंने ऐसाव की तुलना वर्तमान में अपने समय में इटली और रोम से की और याकूब की तुलना इसराइल और यरूशलेम से की। यह उसके दिन और समय के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि चर्च रोम इटली में स्थित रोमन कैथोलिक चर्च था और कैथोलिक चर्च सदियों से यहूदी लोगों का प्राथमिक उत्पीड़क रहा था। प्रथम धर्म युद्ध के दौरान, जिसे राशि ने व्यक्तिगत रूप से देखा था, क्रुसेडर्स द्वारा हजारों यहूदियों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। कई हजारों को केवल यहूदी होने के कारण शहीद कर दिया गया था और जब क्रूसेडर्स यरूशलेम पहुंचे तो हजारों को तलवार से मार दिया गया था। राशि ने यहां तक समझाया कि उत्पत्ति 27 का 39 में हम जो बाइसिंग देखते हैं, जो भूमि की मोटाई और समृद्धि की बात करता है, वह इटली और रोम की आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध ज्वालामुखीय मिट्टी को संदर्भित करता है। इसके अलावा, क्योंकि यह सभी संतों द्वारा अच्छी तरह से समझा गया था कि ऐसाव का इसराइल का दुश्मन बनना तय था, ऐसाव रोमन कैथोलिक चर्च का प्रतिनिधित्व करता है, या जैसा कि उसने उन दिनों देखा था बस चर्च, वैसे भी ऐसाव के बारे में यह पारंपरिक इब्रानी दृष्टिकोण जो उसकी दुर्दशा पर सहानुभूति दिखाता है और साथ ही इसराइल के दुश्मन के रूप में उसकी नियति को स्वीकार करता है, यह संकेत देने के लिए पद 39 के वचनों को इधर उधर करने के प्रयास में दिखाई देता है कि ऐसाव को कम से कम परमेश्वर से कुछ अनुग्रह प्राप्त हुआ अपने पिता इसहाक के माध्यम से। लेकिन इतिहास बताता है कि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हाल ही में मैंने कुछ वक्ताओं को सुना है और कुछ लेख पढ़े हैं जिसमें पद 39 के स्पष्ट गलत अनुवाद को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करते हुए कहा गया है कि मोटापा वास्तव में तैलीय कहने का एक और तरीका है। दूसरे वचनों में कह रहा है वह वसा तेल के बराबर है। यहां विचार ये समझाने के लिए है कि बाइबल कैसे कहती है कि ऐसाव, जिसने एदोम नामक एक क्षेत्र पाया था, को समृद्धि के स्थान पर रहना तय था, जो परिभाषा के अनुसार उसे समृद्धि की ओर ले जाएगा, जबकि वास्तव में एदोम हमेशा से रहा है एक रेगिस्तानी बंजर भूमि जहां जीवन यापन करना कठिन था। तो मोटापा वचन को तेलीयता में बदलकर फिर वोयला, हम देखते हैं कि अरब शेख अपने तेल भंडार के कारण कितने अमीर हैं और इससे पूरी समस्या ठीक हो जाती है। गलत, भले ही वसा को तेल में बदलने का वह भयानक तनावपूर्ण तर्क व्यावहारिक था जो इब्रानी भाषा में, जिस भाषा में यह लिखा गया था, और यह नहीं है, अरब प्रायद्वीप का वह हिस्सा जो था एदोम के क्षेत्र में शामिल कोई तेल नहीं है। जॉर्डन का दक्षिणी भाग वह स्थान है जहां अधिकांश एदोम हुआ करता था और जॉर्डन व्यावहारिक रूप से है बिल्कुल नहीं, और जॉर्डन के दक्षिण में जहां एदोम का शेष भाग स्थित था सऊदी अरब के क्षेत्र के करीब भी नहीं है। नहीं, वचन पृथ्वी की चर्बी एक अन्य मानक और आसानी से पहचानी जाने वाली इब्रानी अभिव्यक्ति है। इसका सीधा सा अर्थ है पृथ्वी के सर्वोत्तम फल और उपज। किसी भी मामले में जब कोई ऐसाव के आशीष के पहले भाग का सही ढंग से अनुवाद करता है कि ऐसाव और उसके वंशजों को उपजाऊ भूमि से दूर रखा जाएगा, इसका अंतिम भाग और ऐसाव की प्रतिक्रिया एक बनाती है बहुत अधिक समझ। उनका आशीष आशीष से अधिक अभिशाप जैसा था। यदि ऐसाव को खुशी से आशीष दिया गया होता और इस तरह उसकी किस्मत में लिखा होता कि वह एक अद्भुत जगह में निवास करेगा, भूमि की समृद्धि से जीवन व्यतीत करेगा, तो क्या वह याकूब को मारने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित होता? इसे देखना काफी कठिन है। लेकिन शापित होने के कारण कि वह भूमि की चर्बी से दूर रहेगा, शापित था कि वह काफी उजाड़ जगह पर रहेगा जहां अक्सर बारिश नहीं होती थी, कोई यह देख सकता था कि वह अपने षड्यंत्रकारी भाई के प्रति हत्या के क्रोध और ईर्ष्या से क्यों जलता था। समृद्ध भूमि से अलग होने का यह अभिशाप याकूब को दिए गए द्व्याधारी के साथ मिलकर ऐसाव को, जो बाद में एदोम कहलाया, याकूब के विरुद्ध, जो बाद में इसराइल कहलाया, हमेशा के लिए स्थापित करने का काम किया। और निश्चित रूप से हमने इतिहास में यही देखा है, यहां तक कि यीशु के समय में भी इसहाक के अपने जुड़वां बेटों पर इस आशीष के लगभग 1800 साल बाद घृणित राजा हेरोदेस स्वयं एसाव पर इस श्राप का परिणाम था, क्योंकि यीशु के समय में नाम एदोम की भूमि को ग्रीक भाषा में इडुमिया के नाम से जाना जाता था और एदोम राजा हेरोदेस की प्रजा विरासत और मातृभूमि थी। आप देखिए वह दुष्ट और रक्त पिपासु राजा हेरोदेस, राजा हेरोदेस जो रोम के हाथों बिक गया और उनकी कठपुतली बन गया, एसाव का वंशज था।
बाइबल दिखाती है कि कैसे एसाव दूसरे समूह के लोगों के वंशजों के साथ मिल गया जिनके पास बहुत अच्छे कारण होंगे, कम से कम उनके दिमाग में इसराइल से हमेशा के लिए नफरत करने के लिए, और एसाव के साथ मिश्रित लोगों का समूह इश्माएल के वंशज थे। सबसे महान पितृसत्ता अब्राहम के शारीरिक रूप से पहले जन्मे बेटे की उत्पत्ति में पहले की दुखद कहानी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था और उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, वाचा के वादे का। और जैसे ही हम उत्पत्ति के बाद के अध्यायों में पहुंचेंगे, हम उस मिश्रण पर कुछ चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जान लें। हालांकि मेरे न कहने का मतलब यह नहीं है कि अरब दुनिया अपने साथ एसाव के जीन लेकर चलती है। विशेष रूप से तुर्की आबादी का एक बड़ा हिस्सा एसाव से संबंधित है, जैसे अधिकांश सीरियाई और इराक के कुर्द लोग हैं। हम सभी को कम से कम ऑटोमन साम्राज्य के बारे में सुनना चाहिए, जिसने कई शताब्दियों तक मध्य पूर्व पर शासन किया, लगभग 1300 से प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद तक। ऑटोमन्स तुर्की राष्ट्र में एक प्रमुख जनजाति थे और ये विशेष तुर्क थे जो एसाव के वंशज हैं, और निसंदेह ये तुर्क मुस्लिम हैं। और हम बाइबल की भविष्यवाणी से जानते हैं कि तुर्क प्रकाशित वाक्य की घटनाओं में इसराइल के दुश्मन के रूप में प्राथमिक भूमिका निभाने जा रहे हैं।
हमें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में अधिकांश मुसलमान एसाव से संबंधित हैं, यहां तक कि अफगानिस्तान में भी। इसलिए यह दुश्मनी जो जुड़वा भाइयों के बीच होगी, याकूब और एसाव लगभग 4000 साल पहले दुनिया की अब की स्थिति से सब कुछ लेते हैं जिससे हमारी वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई, और यह सब महान क्लेश तक और उसके माध्यम से कैसे आगे बढ़ेगा।
आशीष पर थोड़ा और ध्यान दें, या वास्तव में श्राप की एसाव को दिया गया था। यह कहता है, आपके द्वारा तलवार से तुम जीवित रहोगे। दूसरे वचनों में हिंसा और लूटपाट एसाव के लिए धन और समृद्धि प्राप्त करने का तरीका होगा, और जैसा कि मैंने कई अवसरों पर समझाया है, इन भविष्य सूचक आशीषों का व्यक्ति की तुलना में उसके भविष्य के वंशजों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जिन्हें मूल रूप से आशीष प्राप्त हुआ था। और जब हम एसाव की वंशावली की प्रगति का अनुसरण करते हैं तो हम यही पाते हैं कि एसाव के वंशज चरवाहे नहीं बने, वे विजेता और लुटेरों के गिरोह बन गए जो उनकी भूमि से होकर गुजरे। युद्ध उनकी जीवन शैली थी, युद्ध अब उनके इस्लाम का भी केंद्र है।
इसके अलावा आशीष यह भी कहता है, और तुम अपने भाई की सेवा करोगे लेकिन जब तुम बेचैन हो जाओगे तो अपनी गर्दन से जुआ तोड़ डालोगे। यह राजा दाऊद था जो एसाव के वंशजों पर शासन करने वाला याकूब का पहला वंशज था, जैसा कि इसहाक के आशीष में भविष्यवाणी की गई थी। एदोम ने लगभग 1000 ईसा पूर्व से लगभग 735 ईसा पूर्व तक अपनी गर्दन पर इसराइली प्रभुत्व का जुआ पहना था, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राष्ट्र होने से भी अधिक समय तक। यह यहूदा का राजा आहाज था जिसने एदोमी राष्ट्र पर नियंत्रण खो दिया था, और तब से एसाव के वंशजों ने किसी इसराइली के नियंत्रण में होने की बात स्वीकार नहीं की है, और उम्मीद है यह तथाकथित फिलिस्तीनियों के दृढ़ संकल्प को समझाने में भी मदद करता है। आज इसराइल के पुनर्जन्म वाले राष्ट्र के अंगूठे के नीचे किसी भी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए, क्योंकि अधिकांश फिलिस्तीनी मानते हैं कि वे हैं एसाव के वंशज।
यह अध्याय रेबेका के इस आग्रह के साथ समाप्त होता है कि एसाव के क्रोध से बचने के लिए याकूब तुरंत चला जाए। उसने उससे कहा कि उसे उत्तर की ओर मेसोपोटामिया में उसके परिवार के पास वापस जाना चाहिए, विशेष रूप से उसके भाई लाबान के घर। वह इस विचार के साथ इसहाक के पास पहुंची और उसे आश्वस्त किया कि यह इसहाक को यह सुझाव देकर नहीं कि ऐसा याकूब को मार सकता है, बल्कि कार्रवाई का एक विवेकपूर्ण तरीका था, बल्कि इसहाक की उन मूर्ति पूजक जनजातियों के प्रति नफरत की अपील करना था जो उन्हें घेरे हुए थी। ऐसा उन्हें कुछ समय पहले दो कनानी महिलाओं से शादी की थी, विशिष्ट रूप से हित्ती, और इसने इसहाक और रेबेका को पीटा दी। रेबेका ने इसहाक से कहा कि उन्हें याकूब को दूर भेजना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह भी वैसा ही करे, और वह निश्चित रूप से सहमत है। हालांकि याद रखें कि यह कुछ माता पिता नहीं है जो अपने छोटे बच्चे को अपनी देखभाल के लिए भेज रहे हैं। याकूब इस समय 70 वर्ष के थे।